भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम् प्रदानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय गुरु पंच परमेश्वरी भगवान पंच कल्याणक महामहोत्सव की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जब तक इस धरती पर धर्मात्मा रहते हैं तभी तक यहाँ पर धर्म का भी निवास रहता है, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा में कोई अंतर नहीं होता। इन दोनों का संबंध बताया जाता है कि अविनाभाव संबंध होता। अविनाभाव संबंध वह कहलाता है जैसे जल के साथ शीतलता का संबंध, अग्नि के साथ उष्णता का संबंध, अग्नि को उष्णता से अलग नहीं कर सकते और उष्णता को अग्नि से अलग नहीं कर सकते। जल से शीतलता को अलग नहीं कर सकते और शीतलता से जल को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों स्वभाव में, स्वभाव में परिवर्तन अवश्य आ सकता है किंतु स्वभाव का विनाश कभी नहीं होता। अग्नि को शीतल नहीं बना सकते, ये सत्य बात है। अग्नि क्योंकि उष्ण प्रकृति वाली है, उसकी उष्णता को हम कम नहीं कर सकते। जो शीत वस्तु होती है, ऐसा दुनिया की यह प्रसिद्ध वस्तु जल, इसके भीतर जो शीतलता है, उस शीतलता को हम कम कर सकते हैं, पर सर्वथा उसके अस्तित्व को मिटाना संभव नहीं है। जल के अंदर शीतलता है, शीतलता को हम दबा सकते हैं कुछ समय के लिए, और जल भी मान सकता है कि मैं अपने शीतलता को छोड़ करके, शीतल गुण को छोड़ करके विभाव परिणति में आ सकता हूँ, किंतु मैं हमेशा हमेशा के लिए उष्ण बना रहूं, ये कभी इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात अपन प्रतिनित्य अपने दैनिक क्रियाओं के द्वारा देखते हैं। अग्नि को हम शीत नहीं बना सकते, ठंडा नहीं बना सकते, और जल को गर्म तो कर सकते हैं लेकिन उसके अस्तित्व को मिटा नहीं सकते। दोनों की प्रकृति भिन्न है, और यही दो वस्तु ऐसी हैं दुनिया में जो उदाहरण के लिए जब किसी बात को समझाया जाता है धर्म क्षेत्र में, बड़े काम में आते हैं ये दोनों उदाहरण, यहाँ तक कि न्याय ग्रंथों में भी अग्नि का और जल का उदाहरण बार बार में आता है और वहाँ पर अविनाभाव संबंध इत्यादि संबंधों का कथन चलता है, सिद्धि करते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। क्योंकि किसी एक बात की सिद्धि करना हो तो उसके लिए उदाहरण भी देना पड़ता है, प्रमाण भी देना पड़ता है और वस्तु तत्व को समीचीनता सिद्ध करके गले उतारना पड़ता है भव्यात्माओं का। अग्नि का उदाहरण प्रसिद्ध उदाहरण है। अग्नि को हम ठंडा नहीं कर सकते, रंच मात्र भी वह ठंडा नहीं होगा, वह गर्म ही रहेगा। इसका उदाहरण किसके लिए दिया जाए? पांच परमिष्टि होते हैं। नमोकार मंत्र में द्वितीय स्थान पर रहने वाले परमिष्टि कौन है? सिद्ध भगवान। पहले स्थान पर अरहंत भगवान है और द्वितीय स्थान पर सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान को अग्नि की उपमा दी जाए तो बहुत अच्छी तरह से घटित हो सकती है यह बात। सिद्ध भगवान चतुर्गति से मुक्त कहलाते हैं और उनके भीतर के जितने भी पाप और पुण्य कर्म हैं उन कर्मों को भी धो करके वे अनंत काल के लिए इस संसार से मुक्त होकर के सिद्धालय में विराजमान हो चुके हैं। उन सिद्ध परमात्माओं के भीतर वे स्वयं भी चाहे कि पुनः एक बार संसार की यात्रा करें, शरीरधारी बने, कर्मों का बंद करें और पुनः यहाँ पर सिद्ध अवस्था में आकर के एक बार अवतार लें और पुनः वहां से एक बार पुनः यहाँ आ जाए। ये कभी संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि एक बार कोई आत्मा अपने अशुद्ध परिणति से शुद्ध परिणति को प्राप्त कर लेता है तो शुद्ध वस्तु अशुद्ध बन नहीं सकती। आप सुन रहे हैं ना, ये और किसी की बात नहीं, अपनी ही बात है, अपनी आत्मा की बात है। हम आपके संबंध में अभी समझाएंगे, पहले हम शुद्धों को समझते हैं। सिद्ध भगवान एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं तो वो अवतार नहीं लेते संसार में। और अवतार कौन लेते हैं ये यदि आप प्रश्न पूछते हैं, अवतार तो उन्हीं का हो सकता है जो आठों कर्मों से बंधा हुआ है और चतुर गति में बार बार जन्म मरण करता है और उनको करना पड़ता है कर्मों के कारण से। बार बार जन्म मरण होने का कारण क्या है? हम क्यों मरण करते हैं, क्यों जन्म लेते हैं संसार में? इसका कारण एकमात्र कर्म ही होता है। वो सबसे बड़ी शक्ति होती है जो इस जीवात्मा के पीछे अनादिकाल से ये शक्ति काम कर रही है। बहुत पहले से ये कर्म और आत्मा दोनों कब से चले आ रहे हैं इसका हम पता लगाना चाहे तो पता नहीं लगा सकेंगे। आप केवली भगवान से भी पूछते हैं तो यही बताते हैं, हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि खदान में ही, जिस प्रकार खदान में सोना और पाषाण कब से है, कब से मिलावट हुआ और कब से रहते रहते ये दोनों वस्तु आने लगे, इसको जैसे पता लगाना संभव नहीं, उसी प्रकार आत्मा और दोनों अनादि हैं और हम भी आत्मा हैं। सिद्ध भगवान भी आत्मा है, हम भी आत्मा हैं कि नहीं हैं? नश्वर काया में बैठे हैं, अनादिकाल से 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए यहाँ तक आए हैं और भविष्य में भी जन्म मरण करते ही रहेंगे जब तक कि हम धर्म के रास्ते को नहीं अपनाएंगे, मोक्ष मार्ग के रास्ते को अपना करके अपने आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक इस संसार के चक्र से हम मुक्त नहीं हो सकते। इस संसार के चक्र से मुक्त होने का यदि कोई उपाय है तो वह एक ही है, मोक्ष मार्ग की शरण में आना। और मोक्ष मार्ग क्या कहलाता है? हम सम्यक्त्व की उपासना करें, सम्यक ज्ञान की उपासना करें और सम्यक चारित्र यानी संयम की उपासना करें, तप की उपासना करें। यह चतुर्विध आराधना, दर्शनाराधना, ज्ञानाराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, ये चार प्रकार की जो आराधना है, ये आराधना किए बिना हम संसार के बंधन से छूटकर निर्वाण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो आत्माएं इस संसार में रह करके चार प्रकार की इन आराधनाओं को करती हैं, वे निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के कर्म के बंधनों को काटकर कम करने में पुरुषार्थ करते हैं, तो कर्म भी कम होने लगते हैं। बंधु, सिद्धालय में अनादिकाल से आज तक निर्वाण को प्राप्त करते करते कितने आत्माएं वहां पर इकट्ठी हो गईं, इस तरफ यदि आप ध्यान ले जाएंगे तो पता चलता है, आगम आधार से यदि हम विचार करते हैं तो परमात्मा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत नहीं, अनंत से भी अधिक संख्या में, उत्कृष्ट संख्या में विराजमान हैं सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा। इतने सारे सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में जब विराजमान हैं, तो संसार में कितने जीव अभी शेष हैं जो सिद्ध गति को प्राप्त होंगे और भविष्य में कभी न कभी ये मोक्ष दशा को प्राप्त करेंगे, ये संसारी जीवों की संख्या कितनी है, तो इसकी चर्चा भी जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से जो हमारे लिए उपदेश मिला है, ऐसा आगम शास्त्र शास्त्रों में इसकी भी चर्चा आती है कि सिद्धालय में सिद्ध भगवान संसारी जीवों की अपेक्षा से बहुत कम हैं और संसार में जीवों की जो राशि है वो बहुत ही अधिक है, बहुत अधिक है। और अधिक क्यों है, इसका कारण क्या है, ये मोक्ष क्यों नहीं जाते, मोक्ष जाने में कहां अटकाव होता है, ये अटकाव कहां पर है, यदि ये विचार करते हैं तो अटकाव वहीं पर है जो अभी अभी बात चल रही थी, बोली लग रही थी, लेकिन बोली धीरे धीरे लगती रही, एक साथ नहीं लगी। थोड़ा 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 आप बढ़ाते रहें, बढ़ती बढ़ती बोली थोड़ी सी और आगे बढ़ गई और वह बोली फाइनल हो गई। कहाँ अटक रहे थे आप, समझ में आता है ना। अंतरंग परिणति को, आत्मा के आंतरिक भावों को समझोगे तो पता चलेगा आत्मा कहाँ कहाँ पर अटकता है। पर वस्तुओं को देखकर, पर वस्तुओं से आकर्षित होकर, पर वस्तुओं के संग्रह में अटका हुआ आत्मा मोही कहलाता है कि निर्मोही, बताओ, हाँ, मोही कहलाता है ना। ये मोह वस्तुतः वास्तविक दृष्टिकोण से यह मोह भाव आत्मा का भाव होता है या परभाव होता है, आप अभी इस बात पर निर्णय नहीं किए हैं, यही बात बहुत अटकाव के लिए कारण बन रही है। मोह आत्मा का है वर्तमान में, परंतु वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मोह भाव भी आत्मा का भाव नहीं होता, ये परभाव है, क्योंकि पर वस्तुओं को देख करके उत्पन्न होने वाला भाव स्वभाव नहीं हो सकता। पर वस्तुओं को देख करके पर वस्तुओं को संग्रहित करने के जो विचार भाव आते हैं, ये स्वभाव नहीं कहलाते, ये निश्चित रूप से पर के कारण से उत्पन्न होने वाले परभाव ही होते हैं, और इन परभावों की उत्पत्ति में बार बार कारण बनने वाला, बार बार अंतरंग रूप से निमित्त बनने वाला भी एक आंतरिक शक्ति होती है, जिसको हम कहते हैं मोहनी कर्म। मोहनी कर्म के उदय में यह आत्मा मोही होता है, और मोही होने के लिए पर वस्तुओं से आकर्षित हुए बिना वह मोह भाव साकार नहीं होता। बाहरी वस्तु निमित्त है और आंतरिक मोहनी कर्म भी निमित्त है, इन दोनों के निमित्त से उपादान भूत जो आत्मा है वह आत्मा परभावों में अटक जाता है, परभावों की उत्पत्ति भीतर में उत्पन्न हो जाती है और जिसको वह संग्रहित करता है वह धीरे धीरे छोड़ना चाहता है, एक साथ छोड़ने की क्षमता जुटा नहीं पाता। बोलो, पर वस्तुओं का मोह एक साथ छोड़ना चाहिए कि धीरे धीरे छोड़ना चाहिए? एक साथ छोड़ना चाहिए, लेकिन छूटता क्यों नहीं है? यही मोह की महिमा है, यही मोह के संस्कार हैं। इन संस्कारों से हम संस्कारित हैं, परभावों से संस्कारित हैं। परभावों से संस्कारित होने के कारण से यही भाव जब हमारे आत्मा के भीतर से उत्पन्न होती हैं, ये भाव पर वस्तुओं को देखते ही पुनः पुनः होते हैं और पर वस्तुओं को हम संग्रहित करते चले जाते हैं। ये जितना भी संग्रह करो आत्मा तृप्त नहीं होता, कितना भी संग्रहित करो आत्मा के लिए एक शांति नहीं मिलती। और ये शांति क्यों नहीं मिलती, इसके कारण से नहीं मिलती, आत्मा बहुत संस्कारित है अनादिकाल से मोह भावों के कारण से। इस मोह भाव को जो तोड़ने का लक्ष्य बना लेता है, प्रयास करता है, वह निश्चित रूप से मोह के बंधनों को तोड़ने पर वस्तुओं को छोड़ना आसान बन जाता है। फिर बोली लगाने की जरूरत नहीं होती, वह एक साथ बोली लगा लेता है, एक साथ वैराग्य की उत्पत्ति होती है और उस वैराग्य के बल पर मोह सर्वथा टूट जाता है और वह तीर्थंकर भगवान को वैराग्य होने के साथ साथ स्वयं को भी वैराग्य होने लायक अपनी परिस्थिति को निर्माण कर लेता है और उनको वैराग्य की उत्पत्ति एक साथ होती है। जैसे आदिनाथ भगवान के पीछे चार हजार राजा वैराग्य को प्राप्त करके उनके पीछे लगे, तो ये सभी एक साथ बोली लगाते हैं। 4000 राजा लोग धन संपत्ति वैभव सांसारिक सुख इंद्रिय सुख को भूल कर 4000 राजाओं को एक साथ वैराग्य होने का मतलब ये है कि वे मोह को सर्वथा छोड़ना चाहते थे। उनके संस्कार पूर्व के बहुत अच्छे होंगे, इनको धीरे धीरे छोड़ना नहीं पड़ा और एक साथ छोड़ने के भाव आ गए, तो एक साथ छोड़ करके आदिनाथ भगवान के वैराग्य के साथ ही अपना भी वैभव सब कुछ एक साथ छोड़ करके उनके पीछे जाकर के दीक्षित हो जाते हैं। 4000 राजा दीक्षित होना ये सामान्य बात नहीं, युग के आदि की बात थी। जब युग का आरंभ हुआ था उस समय ये राजा लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन कालांतर में परिचय आदि सहन न करने के फलस्वरूप परिचयों को झेलना असंभव हुआ, उसके फलस्वरूप ये दीक्षा को, ये क्या दीक्षा है और इसकी क्या महिमा है, इसको बतलाने वाले तो अभी उठे नहीं ध्यान से, 6 महीने तक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन ध्यानस्थ मुद्रा से जो एक बार बैठ गए वे 6 महीने तक हिले डुले नहीं। परिस्थिति गंभीर होती चली गई 4000 राजाओं पर। वो प्रतीक्षा कर रहे थे आदिनाथ भगवान अब आगे क्या करेंगे, वे जो करेंगे हमें करना है, क्योंकि उससे पूर्व यह दिगंबर दीक्षा क्या होती है, यह मुनि दीक्षा क्या होती है, यह निर्ग्रंथ दीक्षा क्या होती है, इस प्रकार से वस्त्र आदि को छोड़ करके दिगंबरत्व को धारण करना और इसके पश्चात कौन सी क्रिया करनी पड़ती है, उन राजाओं को भी ज्ञात नहीं था। और आदिनाथ भगवान 6 महीने तक उठे नहीं, इसके फलस्वरूप हुआ क्या, हुआ ये परिचय सहन करना क्षमता के बाहर हुआ। स्कोर भूख को मिटाते रहे इसको संबोधने के लिए, इस समस्या को देख करके चिंतित होकर के इंद्र को भी पुनः आना पड़ा, सौधर्मेंद्र को। और वे मुनियों को संबोधते हैं, ये निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा है, इस प्रकार से भोजन नहीं किया जाता, इस प्रकार से जल पिया नहीं जाता, मुनिचर्या एक अलग होती है, इस प्रकार कहते हुए इंद्र जब संबोधता है तब उनको ध्यान में आता है कि हम लोगों ने बहुत गलत किया और पुनः वे अपनी आत्मा को स्थितिकरण करके उस इंद्र के उपदेश से पुनः दीक्षा अवस्था में आ जाती है। ये मोह की महिमा होती है, मोह को एक साथ हम तोड़ सकते हैं लेकिन एक समस्या दीक्षा लेने के पश्चात भी सामने आती है, वह है क्षमता। कष्टों को सहन करने की जो क्षमता होती है वह क्षमता अपने पास अच्छी तरह से होती है तो हम उस परीक्षा में पास होते हैं, और क्षमता कम पड़ जाती है तो एक साथ मोह छोड़ने वाले के ऊपर भी इस प्रकार से आंतरिक एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। बंधुओं, यह संसार अनादि है, इस अनादि संसार को यदि हम शांत करना चाहते हैं तो पर वस्तुओं के मोह को कम करना बहुत आवश्यक होता है। हम अनादिकाल से पर से मोहित हैं। जिनेंद्र भगवान ने ये बताया है कि आप जिन वस्तुओं से आकर्षित होते हैं वे वस्तु दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, जाति की अपेक्षा से दो ही जाति होती हैं वस्तुओं की, दो ही प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक चेतन वस्तु और एक अचेतन वस्तु। आप सोचिए इन दो प्रकार की वस्तुओं में से सदा आकर्षित हम किस वस्तु से होते हैं? चेतन यानी जीव आत्मा, अचेतन यानी अजीव अनात्मा। किससे मोह रहता है अधिक, चेतन वस्तु से कि अचेतन वस्तु से? अचेतन, स्वयं चेतन होकर अचेतन से प्रभावित होना, ये अचेतन बनने के लक्षण है ना। चेतन होकर अचेतन बनना हो और अचेतन की तरह बुद्धि को कुंठित करना हो और उसको अज्ञान में ढकेलना हो तो पर वस्तुओं से मोहित होना बहुत अच्छा है। चेतन जड़ नहीं बन सकता, ये निश्चित बात है। चेतन वस्तु जड़ वस्तु नहीं हो सकती, ये निश्चित बात है। लेकिन चेतन वस्तु अचेतन को देखकर प्रभावित होने लग जाए तो यह चेतन वस्तु भी अचेतन से कम नहीं होती, अचेतन ही कहलाती है। वह आत्मा भी अनात्मा है जो अज्ञान में होता। आगम शास्त्रों में उस आत्मा को भी अनात्मा कह दिया, जो अपने स्वभाव में नहीं रहता और पर स्वभाव में अटकता है, पर वस्तुओं से आकर्षित होता है, वह आत्मा वस्तुतः अनात्मा की कोटि में आता है। हम अनादिकाल से अनात्मा की कोटि में ही रहे, वर्तमान में भी हमारी स्थिति अनात्मा की ही स्थिति है। हम अनात्मा से आत्मा बने, अंतरात्मा बने, अंतरात्मा से फिर परमात्मा बने, परमात्मा बनने के पश्चात फिर आत्मा को कुछ भी बनाना नहीं पड़ता, आत्मा आत्मा रहती है, स्वयं के स्वभाव में आ जाती है, तो फिर बाद में परभाव में जा नहीं सकती। इस प्रकार इसके पास योग्यता है, इस प्रकार इसके पास एक क्षमता है, इसी क्षमता को हमें जागृत करना है, इस योग्यता को उद्घाटित करना है। उसका उद्घाटन होने के पश्चात फिर आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, बोली आप एक साथ ले सकते हैं। अभी आगामी दिनों में वृषभनाथ भगवान को ही वैराग्य होना है, अभी वे गर्भ अवस्था में आने वाले हैं। आज गर्भ क्रिया की पूर्व आरंभिक क्रियाएं हैं, कल के दिन उत्तर क्रियाएं होती हैं, गर्भावस्था की प्रारंभिक क्रियाएं पूर्व क्रियाएं कहलाती हैं और उत्तर क्रियाएं कल के दिन होती हैं। ये सारा का सारा दृश्य आपको देखने को मिलने वाला है। जो आत्मा इस संसार में अवतरित होकर के अवतार कौन लेता है, जो संसार में होता है वो अवतार को अवतार लेता है, और जो ईश्वर माना जाता है, सिद्ध भगवान माना जाता है, उनका अवतार नहीं होता, क्योंकि वे पंचम गति में प्रविष्ट होने के पश्चात नीचे के चार गति में उनका आवागमन नहीं होता, आना नहीं होता। आदिनाथ भगवान का जी सर्वार्थ सिद्धि से आने वाला है, गर्भ अवस्था में आने वाला है। और आज शायद रात्रि ही कार्यक्रम इसके होते होंगे ना, रात को ये क्रियाएं सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी, किस प्रकार से वह आत्मा अवतरित होती है संसार दशा से और अवतार लेने के पश्चात फिर मोक्ष मार्ग की यात्रा जब वह करती है और कर्मों को काटकर निर्वाण अवस्था को प्राप्त होती है, तो वह अवतार दशा से भी मुक्त हो जाती है। जो भगवान होता है वो संसार में अवतार नहीं लेता, जो परमात्मा होता है वो बार बार जन्म मरण नहीं करता, एक बार मरण करता है तो उसके पश्चात जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता है तो फिर मरण भी नहीं होता। इस प्रकार जन्म मरण के चक्र से वह आत्मा छूट जाता है। यही दृश्य हमें 5 दिन तक यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आप सभी उत्सुक होकर के दोनों टाइम रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुबह यहाँ पर प्रतिनित्य उपदेश और जो क्रियाएं पूजन अनुष्ठान की क्रियाएं हैं उनको उत्साह के साथ देखें और गौर से देखें, और उन क्रियाओं को देख करके, इस दृश्य को देख करके अपने आत्मा के साथ उनकी तुलना करें और उससे शिक्षा प्राप्त करें और अपने आत्मा के भीतर अनादिकाल से चली आ रही मोह परिणति को दूर करने का प्रयास करें, तो एक आप भी सामान्य आत्मा परमात्मा बन सकते हैं। यह आर्यखंड है, धर्म करने का अवसर केवल मात्र आर्यखंड में ही मिलता है। यह आर्यखंड मिलना एक बहुत बड़ा आश्चर्यकारी घटना मानी जाती है। जन्म लेने के लिए और मरण करने के लिए बहुत कुछ योनियां हैं, 84 लाख योनियां, पर सभी योनियों में आर्यखंड में मनुष्य बनकर जन्म लेना, हम गर्भज मनुष्य हैं, आर्यखंड के मनुष्य हैं, हमारी महिमा अलग होती है। इस महिमा को सारे के सारे 3 लोक के जीव गाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि उस योनि में हम कब कैसे जन्म लें और वहाँ पर जा करके दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करके, तप की आराधना करके हम इस संसार के बंधन से छूटे। इस प्रकार 3 लोक के सारे जीव सोचते हैं। आप जहाँ हैं, जिस पर्याय में है, वह रत्न है, कोहिनूर रत्न के समान यह पर्याय मानी जाती है। इसकी महिमा अलग है, अपरंपार है। इसकी महिमा को समझ करके हमें अपने जीवन में क्या करना क्या नहीं करना, ये हेयोपादेय ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक दशा में आपको सम्यक दर्शन की उपासना करनी पड़ेगी, सम्यक ज्ञान को विकसित करना पड़ेगा और सम्यक चारित्र यानी संयम को धारण करना पड़ेगा। आपके जीवन में जितनी शक्ति है वो शक्ति लगा करके संयम को एक देश धारण करे या संपूर्ण धारण करे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आदिनाथ भगवान तो दीक्षा लेंगी है, जितनी 2-3 दिन की बात है, उनके साथ जिनको भी मन हो जाए दीक्षा के लिए खड़े हो जाए और मैं एक साथ ये मोह माया को छोड़ सकता हूँ, मेरे पास कैपेसिटी है, मेरे पास साहस है, मैं बंधन को तोड़ सकता हूँ, इस प्रकार यदि विचार करेंगे तो इससे बढ़कर के आर्यखंड की इस मनुष्य पर्याय में महिमामय इस काया में यदि इस प्रकार के भाव आप जागृत कर लेते हैं तो इससे बढ़कर के कोई भी काम इस दुनिया का नहीं है। 3 लोक में भी इससे बढ़कर के कोई काम नहीं है। ये अंतिम कार्य कहलाता है। संसार शांत जिसके माध्यम से होता है वह कार्य अंतिम कहलाता है। ऐसे अंतिम कार्य के लिए आप तैयार रहें। आदिनाथ भगवान को अभी गर्भ में भी नहीं आया है, आने वाला है, शाम को ये क्रियाएं दिखाई जाएंगी। आदिनाथ भगवान गर्भ में आएंगे, आप देखें किस प्रकार महान आत्मा गर्भ में आती हैं, उससे पूर्व ही यहाँ पर किस प्रकार का वातावरण छा जाता है, किस प्रकार की महिमाएं यहाँ पर गाई जाते हैं उस आत्मा की, ये सारे के सारे दृश्य शाम को देखें और दिन भर भी देखें तो देखने का अवसर यहाँ मिला है। आप देखें और अपने आत्मा को मंगलमय धर्म के रास्ते पर लगा करके आप भी मंगल बने, मंगल आत्मा आत्माओं के भीतर शामिल हों और अपने आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करके अनंत शांति एवं अनंत सुख को प्राप्त करें। इसी मनोभावना के साथ अहिंसा परमो धर्मः।